arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास, वाचक स्वर पद्मा मणि।
इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति 1688 ईस्वी। 1688 ईस्वी की रक्तहीन क्रांति इंग्लैंड की संसदीय इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुई, क्योंकि इस क्रांति के फलस्वरूप देश में संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। ये कथन है रैमजे म्योर का। इंग्लैंड की क्रांति अथवा अंग्रेजी क्रांति। इंग्लैंड में 1603 ईस्वी से 1688 ईस्वी तक स्टुअर्ट वंश के राजाओं का शासनकाल था। इस काल में राजा एवं संसद के मध्य दो बार क्रांति हुई। पहली क्रांति प्यूरिटन क्रांति या गृह युद्ध के नाम से जानी जाती है, यानी 1642 से जो 1642 से 1649 ईस्वी के बीच हुई। निरंकुश सत्ता एवं स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध हुए युद्ध में जनता ने अपने राजा चार्ल्स प्रथम का सिर काट लिया। दूसरी क्रांति 1688 ईस्वी रक्तहीन एवं स्वरूप में अधिक निर्णायक थी, इसलिए उसे गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। इन दोनों क्रांतियों के फलस्वरूप इंग्लैंड में राजा की निरंकुशता हमेशा के लिए समाप्त हो गई और शासन की बागडोर संसद के हाथ में आ गई। 1603 से 1688 ईस्वी तक के सारे घटनाक्रम और परिवर्तन को इंग्लैंड में अंग्रेजी क्रांति के नाम से जाना जाता था। इंग्लैंड की संसद का उद्गम। इंग्लैंड के राजा हेनरी प्रथम ने 11वीं सदी में सामंत वर्ग के मुख्य व्यक्ति और चर्च के प्रमुख पादरियों की एक परिषद बनाई और इसी परिषद से ही इंग्लैंड की संसद का उद्गम माना जाता है। 13वीं सदी के आते आते इसी परिषद को संसद कहा जाने लगा। 1215 ईस्वी में संसद के विकास में दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन उस समय हुआ जब राजा जॉन ने इंग्लैंड के बैरनों की मांग को मैग्ना कार्टा नाम के अधिकार पत्र के द्वारा स्वीकार कर लिया। इस अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा ने राजा के अधिकार के हस्तक्षेप से बैरनों के हितों की और मनमाने करों की वसूली से व्यापारियों की रक्षा करने की कोशिश की। 13वीं सदी में हेनरी तृतीय के शासनकाल में करों के प्रश्न को लेकर गृह युद्ध हुआ। विद्रोहियों के नेता साइमन द मॉन्टफोर्ड ने राजा के पराजय के बाद संसद को आमंत्रित किया। इस संसद के सदस्यों में नाइट और कस्बों के प्रतिनिधि शामिल थे। द मॉन्टफोर्ड ने जिस संस्था का निर्माण किया वह जनता के द्वारा चुनी हुई सदस्यों की संस्था नहीं थी। इस संस्था की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति ये थी कि वह सरकार की आय व्यय का पूरा नियंत्रण रखती थी। कुछ समय तक संसद राजाओं की एजेंसी एवं कठपुतली मात्र ही थी जिसके द्वारा राजा कर लगाते और वसूली करते रहे। ट्यूडर राजाओं के समय तक संसद एवं राजा के संबंध ठीक रहे, क्योंकि ट्यूडर शासक संसद के अधिकारों का सम्मान करते थे, किंतु स्टुअर्ट शासकों के समय संसद और राजाओं के मध्य संघर्ष एवं विद्रोह प्रारंभ हो गया। संसद एवं राजतंत्र के मध्य संघर्ष का कारण। पहला, स्टुअर्ट शासक दैवीय सिद्धांत के समर्थक थे। जेम्स प्रथम एवं चार्ल्स प्रथम जैसे शासक राजा के दैवीय सिद्धांतों में विश्वास करते थे और वे दैवीय सिद्धांतों के समर्थक थे। इस सिद्धांत के अनुसार राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसके आदेश पृथ्वी पर ईश्वरीय आदेश होते हैं, अतः राजा के आदेशों का पालन जनता को करना चाहिए। राजा के कार्य का विरोध करना ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना है। राजा से झगड़ना राजद्रोह है। राजा सिर्फ ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, किसी सांसारिक शक्ति या संस्था के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है। इंग्लैंड के संसद का मानना था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है, उसका अधिकार एवं शक्तियां सीमित और नियंत्रित हैं और वह जनता के प्रति पूरी तरह उत्तरदायी है। स्टुअर्ट नरेशो ने संसद की इस दलील को नहीं माना, संसद के विशेष अधिकारों की उपेक्षा की। दूसरा, स्टुअर्ट राजाओं का चरित्र। जेम्स प्रथम दंभी और संकीर्ण विचार का व्यक्ति था। वह अपनी आलोचना को सहन नहीं कर सकता था। वह सदा ही संसद का विरोध करना चाहता था। जेम्स का उत्तराधिकारी शिक्षित था किंतु बहुत ज्यादा जिद्दी और हठी था। वह न तो किसी की बात को भली प्रकार समझता था और न ही वह अपनी बात दूसरों को भली भांति समझा सकता था। वह राजा के विशेष अधिकारों को अधिक महत्व देता था। संसद इन अधिकारों को नियंत्रित करना चाहती थी। स्टुअर्ट राजाओं का व्यक्तित्व एवं चरित्र संघर्ष का कारण बन गया। तीसरा, स्टुअर्ट राजाओं की आर्थिक समस्या। प्रशासन चलाने, विभिन्न प्रकार की प्रशासकीय नीतियों को लागू करने, षड्यंत्र एवं विद्रोहों के दमन हेतु स्टुअर्ट राजाओं के पास धन का सदा अभाव रहता था। वे अवैधानिक साधनों द्वारा संसद की बिना स्वीकृति के कर लगाकर धन एकत्र करना चाहते थे। जेम्स ने धन लेकर अनेक व्यक्तियों को अनुचित प्रकार के ठेके और उपाधियां दी, जिससे संसद राजाओं से नाराज थी। चौथा, धार्मिक दृष्टिकोण। स्टुअर्ट शासक एवं जनता के धार्मिक दृष्टिकोणों में भी भिन्नता थी। स्टुअर्ट शासकों का झुकाव कैथोलिक धर्म की तरफ था, जबकि इंग्लैंड की जनता और संसद एग्लिकन चर्च की अनुयायी एवं प्रोटेस्टेंट धर्म का समर्थक थी। ब्रिटिश संसद में प्यूरिटनों का बाहुल्य था, जेम्स इनका विरोधी था। पांचवा, स्टुअर्ट शासकों की विदेश नीति। विदेश नीति के क्षेत्र में राजा एवं संसद के मध्य गहरे मतभेद थे। जेम्स ने अपने पुत्र चार्ल्स प्रथम का विवाह फ्रांस की राजकुमारी हेनरिटा मारिया से कर दिया, जबकि संसद फ्रांस से मैत्री संबंध नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि फ्रांस एक कैथोलिक देश था। 30 वर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की संसद चाहती थी कि इंग्लैंड का राजा स्पेन के विरुद्ध लड़े और जर्मनी के प्रोटेस्टेंटों की सहायता करे, परंतु राजा ऐसा नहीं कर रहा था। वह संसद की इच्छाओं की अवहेलना कर रहा था। चार्ल्स प्रथम ने स्पेन को पराजित करने के लिए उसे युद्ध किया, परंतु कैडिज के बंदरगाह में अंग्रेजों की हार हुई। इस कारण भी संसद राजा से नाराज थी। छठवां, संसद के मूल अधिकारों पर मतभेद। संसद का मानना था कि राजा को संसद की अनुमति के बिना कर लगाने या जनता से धन वसूल करने का अधिकार नहीं है। संसद का मानना था कि राजा संसद द्वारा पारित कानून की सीमा और परिधि में है, जबकि राजा संसद की इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। वे अपने को कानून और संसद से ऊपर तथा श्रेष्ठ समझते थे। राजा एवं संसद में इस बात को लेकर झगड़ा था कि वास्तविक संप्रभु शक्ति किस में है, राजा में है कि संसद में। राजा कहता था कि संपूर्ण संप्रभुता शक्ति मेरे हाथों में निहित है, जबकि संसद कहती थी कि संप्रभुता शक्ति जनता के वास्तविक एवं चुने हुए प्रतिनिधि संसद में है। अतः प्रशासन संबंधी संचालन का अधिकार संसद को है। सातवां, नवीन दृष्टिकोण तथा राजनीतिक जागृति का विकास। पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप जनता ने अपने अधिकारों को समझा और उन्होंने निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन के दोषों को समझकर उसका विरोध किया। स्टुअर्ट शासकों ने जनता के मनोभावों को समझने में गलती की। राजा एवं जनता में सामंजस्य नहीं हो पाया और संघर्ष की स्थिति निर्मित हुई। आठवां, राजा द्वारा सैन्यकरण का विरोध। 17वीं सदी में लोगों ने विरोध करना आरंभ कर दिया कि राजा स्वयं अपनी सेना नहीं रख सकता। जनसाधारण का यह भी विचार था कि बिना संसद की पूर्व अनुमति के राजा स्वयं न तो किसी देश से युद्ध कर सकता है और न ही दूसरे देश से संधि कर सकता है। नौवां, न्यायालय संबंधी स्वतंत्रता। इंग्लैंड की जनता के विचार से न्यायालयों पर किसी प्रकार का दबाव या हस्तक्षेप न हो, स्वतंत्र न्यायालय ही निष्पक्ष न्याय जनसाधारण को दे पाएंगे। दसवां, मध्यम वर्ग में असंतोष का परिणाम। मध्यम वर्ग के उदय का प्रमुख कारण था नगरों का विकास और व्यापार में वृद्धि। यह वर्ग राजनीतिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था तथा राजा की कई नीतियों का विरोध करता था। अतः राजा और मध्यम वर्ग में भी सदैव तनाव बनी रहती थी।
arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।